वो दी अलकिताब, और किताब रख दी जाएगी। अब ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, इसलिए क्योंकि एक दफा आयशा रजी अल्लाह तआला रो रही थी तो आपसे सलम ने पूछा कि क्यों आप रो रही हैं। फरमाती कि मैं, मुझे वो वक्त याद आ गया, क्या होगा कयामत के दिन, तो आप हमें याद रखेंगे वहां पे। होता है ना इंसान को कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो मतलब रिश्ता है, रिश्तेदारी है, आप हमें याद रखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तीन मौके पे तो कोई किसी को याद नहीं रखेगा, इनमें से एक ये मौका भी जहां बामालनामे दिए जाएंगे ना, कोई किसी को नहीं याद रखेगा। अपनी अपनी पढ़ियों की कि हाय, इंसान परेशान होगा ना, क्योंकि जाहिर है बात है उसको यही नहीं पता कि मेरे किस हाथ में अमालनामा दिया जाए, राइट में दिया जाएगा, लेफ्ट में दिया जाए, अमालनामे नशर किए जाएंगे, वो उड़ाए जाएंगे, और फिर जिस वक्त अमाल तोले जाएंगे तो इंसान की बुरी हालत होगी, कोई होश नहीं होगा उसको कि कौन कहाँ है क्या है। अब उसको क्या पता कि मेरी क्या नेकी बढ़ जाए, क्या नेकी घट जाए, क्या मेरी मेरा अब हाल क्या होना है। अब इस वक्त बस फैसला होने लगा है, दिस इज द फाइनल थिंग। इतने से हम तो छोटे छोटे इम्तिहानों से कांप जाते हैं। छोटे से कोई हमसे ना सवाल करने लगे, वो कोई इमिग्रेशन वाला, कोई पुलिस वाला हमें रोक ले तो हमें जान निकल जाती। कोई FBI किसी के घर पे आ जाए तो वो FBI का नाम सुन के ही उनके टांगे कांपने लगती। क्या वो दिन होगा कि एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ अमाल है, और वो अमाल तुल रहे हैं और पता नहीं है किस चीज का वेटेज कितना हो। पता नहीं हम इतनी जो नेकियां करके आए हैं आज यही ना हो गए, इनका वेट ही ना कुछ रहे। हो सकता है, क्योंकि किसको पता है, अपने कहीं इखलास में कमी आ गई, कहीं रियाकारी हो गई थी, कहीं दूसरे किसी अमल से, अपने किसी गुनाह से नेकियों को मिटा दिया था, कई गुनाह ऐसे उनसे नेकियां मिट जाती। तो कोई इंसान को पता थोड़ी होगा कि मेरा आज, मेरे श्योर है कि आज मेरे साथ ही, नहीं, कोई भी नहीं जानता होगा। तो फरमाया उस वक्त कोई को किसी का नहीं होश होना। और फिर तीसरा मरहला वो है जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, उस वक्त सबकी हालत बुरी होगी, इसलिए कि नीचे जहन्नम में एक कदम फिसला और जहन्नम के अंदर। अब क्या पता है कि पार होंगे भी कि नहीं होंगे, ये नहीं पता। अल्लाह अकबर, अल्लाह तू हमें माफ कर देना। वहू दी अल किताब, और रख दी जाएगी किताब, यानी हर एक की बुक, हर एक की किताबें जिंदगी। अतरल मुजरिमीन, तो तुम देखोगे मुजरिमों को। मुजरिम कौन, मुजरिम क्या मतलब, किनको कहा जा रहा है, काफिरों को कहा जा रहा है, नहीं काफिर तो नहीं यहाँ पे कहा गया, मुशरिक भी नहीं कहा गया, मुजरिम जो भी अल्लाह के मुजरिम है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुशरिक है, चाहे वो फासिक फाजिर है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है, चाहे वो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला है, चाहे वो अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने वाला है, सारे मुजरिम ही हो गए ना। अल्लाह के भी तो मुजरिम है, जैसे दुनिया में कई कंट्रीज के मुजरिम होते, वो कौन होते जो उस कंट्री के लॉ को तोड़ते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, कहते हैं ये मुजरिम है, ऐसा है ना। अल्लाह के कानूनों को तोड़ने वाले क्या वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, क्या उनको मुजरिम नहीं कहा जाएगा। बस फिर भी इंसान अल्लाह के कानून को तोड़ता है, रोजाना तोड़ता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, उसके लॉज को तोड़ता है, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, तो क्या हो गया अगर ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है इससे, इतनी भी क्या बात है, अपने आप को मुजरिम नहीं समझता और इस चीज का एहसास भी नहीं रखता कि ये मैंने जुर्म किया और मैं अल्लाह का मुजरिम हूं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप नमाज ना पढ़े, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप पर्दा ना करें, कोई आपको कुछ नहीं करेगा अगर आप रोजाना रखें मसलन, कोई भी नहीं कुछ कहेगा आपको, चाहे आप सूद खाते जाएं कोई नहीं कुछ कहेगा। जाहिर है ये चीजें तो आम है, सभी कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान सोचता है कि मैं बड़ा पाक साफ और बड़ा ही अच्छा इंसान हूं, क्योंकि वो जो दुनिया की कोर्ट है वो आपको कुछ नहीं कह रही। लेकिन याद रखें, इंसान चाहे दुनिया की कोर्ट में समझता है अपने आप को कि मैं मुजरिम नहीं हूं, अल्लाह की कोर्ट में वो मुजरिम बन जाता है जब वो अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ता। वो मुजरिम है, और कितने ही मुजरिम है यहाँ पे जो इस जमीन पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो मुजरिम हैं, मगर वो अपने आप को मुजरिम समझते नहीं, इसलिए कि इट्स ओके, सभी कर रहे हैं ना। हम उस चीज को सिर्फ जुर्म समझते हैं जो दुनिया के कानून में नहीं है। जब हम दुनिया के किसी कानून को तोड़ते हैं ना, तब हम सिर्फ उसको मुजरिम समझते हैं। अल्लाह के कानून को तोड़ा जाए, वो कोई जुर्म नहीं हमारे नजदीक, वो मुजरिम है ही नहीं। लेकिन वो अल्लाह का तो मुजरिम है ना। उस दिन मुजरिम देखेगा मुशफिकीन, डरा हुआ, शफक से ना खौफजदा होना, कि किस बात से खौफजदा होगा कि इस किताब में अब पता नहीं क्या मेरे सामने आने लगा, हालांकि उसने खुद ही लिखी हुई है, उसकी अपनी बुक है, किसी और की नहीं बुक देख रहा। तो अब वो, उसको ये डर पड़ गया कि हाय मेरी बुक में क्या है। खुद सोचे, आज अपने आप को वहां खड़ा करके सोचे कि मेरी ये बुक अभी तक की, चलो आगे की नहीं, अभी हम कहते अभी तक की जो मेरी बुक है, मेरी ये बुक मेरे सामने खोल दी जाए। तो मैं क्या खुश होंगी या फिर डरूंगी? मुशफिकीन अम्मी माफी, वो डर रहे होंगे किस चीज से जो उसके अंदर इस किताब में। कभी इंसान अपने भी अमल से डरता है, यहाँ पे तो नहीं हम डरते, वहां पे डर रहे होंगे। यहाँ पे तो अल्लाह के कानून को तोड़ तोड़ के भी नहीं डरते किसी तरह, वहां पे अपने ही कामों को देख के और अपने ही कामों से डरेंगे। खोलो ना, और जब वो देखेंगे ना तो फिर कहेंगे या वही लतन, हाय अफसोस, हादल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसमें तो कोई बात छोड़ी नहीं गई, ना छोटी ना बड़ी, नहीं इल्ला आसाहा, ये नहीं है कि सिर्फ लिखी हुई है, बल्कि गिन गिन के डिटेल में लिखी हुई है, हर हर बात, हर हर हरकत, ये नहीं कि सिर्फ जो मुंह से निकाली है बात, हर हर अमल, हर हर फेर, हर बात। हमें तो कल की कोई बात कही होती ना, वो भी नहीं याद रहती। सुबह क्या किया था उठ के, आज हम बिस्तर से उठे तो हमने सबसे पहले क्या बात बोली है, मेरे से पूछेंगे, मुझे तो नहीं याद कि मैंने क्या बोला। बाज दफा तो हमें ये भी नहीं याद रहता हमने ये नमाज पढ़ी भी थी कि नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ देखें कैसा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, हर हर बात लिखी हुई है, हर हर जेस्चर, हर हर इशारा, हर हर फिंगर पॉइंटिंग, हर हर आंसू, हर हर मुस्कुराहट, हर हरकत, हर एक्शन, किस लिए मुंह खोला, किस बात पे खोला, किस चीज पे मुस्कुराए, किसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, किसका फोन नहीं उठाया, किसका फोन ले लिया, किस चीज को टाइप किया, किस वेबसाइट पे गए, कितनी देर पे वहां रहे, किस दिन गए थे, किस घंटे में गए थे, किस मिनट में गए थे, किस जगह पे उस वक्त बैठे हुए थे, कौन कौन आपके पास बैठा हुआ था, कौन आपको देख रहा था, आपने किसको देखा, कौन आपके सामने आया, किसको अदाएं दिखाई, किसके सामने आजी की, किसके सामने शोखियां मारी, किसके आगे तकब्बुर किया, किस दिन, किस मिनट, किस घड़ी, किस सेकंड में ये सब किया, किस पे हंस दिए, नमाज कितनी रकत पढ़ी, कितनी रकत खुद हम पढ़ रहे थे, हमें खुद ही नहीं पता होता कितनी रकत पढ़ ली और कितनी रह गई, लेट पढ़ी कि टाइम पे पढ़ी, ये नमाज थी ये बगैर वजू के पढ़ ली, इसमें वजू टूट गया हुआ था, इसकी इस जगह पे बैठे हुए थे, इस गुफ्तगू के अंदर इतनी गीबतें की, इतने लोगों का मजाक उड़ाया, इस बात का मजाक उड़ाया, अकेले थे या उस वक्त और कौन कौन था साथ, वो किस जगह पे ये मजलिस थी, कौन सी टाइम पे ये मजलिस थी, रात में थी दिन में थी। अल्लाहु अकबर, ये सदका ये छुपा के दिया था, ये लोगों के सामने दिया था, इस वक्त क्या सोच रहे थे, ये किसको दिया था, रात के वक्त उठे थे तो कितनी दफा अल्लाह को पुकारा था, किस बात पे आंसू निकल आए थे, कितने आंसू निकले थे, किसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कितने कदम चले थे, कितने हर्फ कुरान के पढ़े, हर्फ लफ्ज नहीं हर्फ पढ़े, किस दिन में पढ़े, किस जगह पे बैठे हुए थे जब पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, किस वक्त में कौन सी हराम चीज सामने, या हराम शख्स, या जिसको देखना हराम था वो शख्स सामने आया, उसको किस तरह देखा, किस नजर से देखा, किसके कौन सामने आया और नजरें झुका ली। अल्लाह अकबर, सब ये लिखा हुआ है, मरते दम तक का हिसाब किताब लिखा हुआ है, कौन से सीन स्क्रीन पे देखे, सब चीजें, या अल्लाह इतनी डिटेल में हमें खुद कहा जाए ना, हम अपनी बुक लिखे, हम नहीं लिख सकते, और फिर इतना कुछ लिखा हुआ, और ये तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आखिरत में तो जाके ये बुक देखनी है। आपको पता है, अब ये एक रिसर्च आई कि उन्होंने, एक आदमी था उसके दिमाग की स्कैनिंग कर रहे थे और उसके बीच में ही उसकी डेथ हो गई, तो वो जो उन्होंने स्कैनिंग की, तो उन्होंने, वो स्कैनिंग तो चल रही थी, उन्होंने देखा जब उसकी डेथ से पहले इतनी बेचैनी और ऐसे जो वेव्स थी उसकी, जो दिमाग की थी, जो जो उसके ऊपर चल रहा था, ने कहा कि पूरी इसकी जिंदगी के जो वाकयात है ना, वो इसके सामने घूम गए। यार आप, मैं सोच रही, अपने आप को इमेजिन ही करके सोच रही थी कि वाकई उस वक्त तो जिंदगी घूम जाती होगी इंसान के सामने से, कि जब वो जा रहा है यहाँ से, डिपार्ट हो रहा है, जुदाई हो रही है हमेशा की, तो सब वो सीन सामने आ रहे हैं, ये ठक 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 करके बचपन जवानी में, ये सारी चीजें, जो चीदा चीदा चीजें होंगी वो तो याद आती ही होंगी ना, वो शादी हुई, बच्चा फलां, उसका वो, इसका ये काम हो गया, फिर उसको वो वहां चला गया, फिर उसने ये कह दिया, फिर वो कितना कुछ होता है। लेकिन ये जो अमालनामा है ना, ये तो एक एक चीज है इसके अंदर, वो तंज, वो मजाक, वो किसी को माफ ना करना, वो किसी से माफी मांगना, वो किसी को ये कहना, वो किसी, वो कोई एक्शन है, वो बात है, वो सोच है, वो कोई भी चीज है, वो उठना है, वो बैठना है, किसके लिए उठ गए, किसके लिए बैठ गए, कितने कदम किस तरफ चले, कोई कदम मस्जिद की तरफ जा रहे थे, कोई सिनेमा की तरफ जा रहे थे, कोई कहीं क्लब की तरफ जा रहे थे, कोई किसी मदरसे की तरफ, क्या हो रहा था, इतने पैसे इस जगह पे स्पेंड किए, इतने इस जगह पे स्पेंड किए, एक एक चीज का हिसाब है इसमें लिखा हुआ, क्या करेंगे, इंसान डरेगा नहीं तो और क्या करेगा, खौफ जदा होगा। तो आज हमारा अमालनामा हमारे ही अपने सामने आ जाए तो मेरी और आपकी क्या कैफियत होगी। देखिए एक बात को समझें, ये जो हम आज बैठे हुए ना, हम सोचते हैं कि पता नहीं वहां जाके हमने कुछ और ही बन जाना है, कि क्या हो जाना है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जानी, नहीं, हम यही यहाँ पे हम वही वहां होंगे, यही अक्ल होगी, यही समझ होगी, यही सोचे होंगे, ऐसे नहीं कि वहां जाते ही हम कोई औलिया अल्लाह बन जाएंगे, कोई हम वहां जाते ही कोई बड़ी नेक हस्ती शख्सियत बन जाएंगे, क्योंकि अब हम कयामत के दिन में आ गए, नहीं, यही है। इसीलिए तो कोई वहां पे झूठ बोलेगा, कोई वहां पे जो भी हो, दुनिया में जैसे करते वैसे ही करेगा, जैसे दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते थे, छोटी छोटी बात पे अपने आप को बचाने के लिए, वहां पे इतनी बड़ी बात पे क्या नहीं वो झूठ बोलेगा, जो यहाँ पे छोटी सी बात पे झूठ बोल देता। तो अब क्या करें, अब गुजरा वक्त तो वापस नहीं आ सकता, अब क्या करें, ये अमालनामा तो ऐसे काबिल नहीं है कि जो वहां पे हम रख सके, प्रेजेंट कर सके, तो क्या करें, अगर टाइम को नहीं हम वापस ला सकते तो कोई चीज कुछ हम कर सकते हैं और, जी हाँ, वो है इस्तिग़फ़ार, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी दो उसको जो अपने अमालनामे में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाए, फरमाया जो इंसान चाहता है ना कि वो अपना नामा माल देख के खुश हो जाए, उसको चाहिए कि इस्तिगफार की कसरत करे। यानी ये है जो हमारी उन गुनाहों को डिलीट कर सकता है। हमारे पास इरेजर है आज मिटाने के लिए। इरेजर हमारा क्या है? इस्तिगफार है कि हम इसे मिटा दें और अल्लाह ताला चाहे तो हमारे गुनाहों के निशानों को भी मिटा दें कि हमें वो गुनाहों के निशान भी नजर ना आए। जैसे आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं उसको डस्टर से मिटा देते हैं तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी लिखा ही नहीं। लिहाजा ये इरेजर हमारे पास है। जितना हमारे पास इखलास और जितनी हमारे पास पशेमानी और निदामत होगी इतना ही हमारी इस्तिगफार स्ट्रोंग होगी और हम इरेज कर सकेंगे अपने गुनाहों को। लिहाजा बाकियात उस सालेहात को बढ़ाने की जरूरत है और इरेजर से इनको मिटाने की जरूरत है जो हम नहीं देखना चाहते उस दिन। अल्लाहु अकबर। आज तो हम चाहते हैं कि हमारी तारीफें हो, हमारे लोग गुण गाएं। छोटी सी भी कोई हमारी तारीफ कर देता है हम उसको कहीं पोस्ट कर देते हैं, देखो मेरी फलाने ने कितनी तारीफ की है। वहां पर इंसान चाहेगा कि वहां पे भी ऐसे ही होगा, इंसान चाहेगा मेरी तारीफ हो, ये नहीं चाहेगा कि मैं बदनाम हूं लोग सारे मेरा तमाशा देखे। ऐसा नहीं होगा कि वहां जाके तो क्या फर्क पड़ता। नहीं, वहां पे भी इंसान जिल्लत महसूस करेगा, बेइज्जती महसूस करेगा। हाय ये सारी बातें मेरी सबको पता चल गई तो क्या होगा। आज तो छुपा ली लोगों से कि मैं क्या बोलती हूँ क्या कहती हूँ क्या देखती हूँ क्या सुनती हूँ, कब सोती हूँ कब जागती हूँ किसी को क्या पता। फिर वहां पे कैसे छुपाएंगे। वो वजदू मा आमिलू हाजिरा, और वो पा लेंगे जो उन्होंने अमल किए अपने सामने। हाजिर हाजिर होंगे वो सारे अमल बिल्कुल सामने होंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और नहीं जुल्म करेगा तेरा रब किसी एक पे। अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता। हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया और तुम्हें भी यही हुक्म देता हूँ एक दूसरे पर जुल्म ना करो, तुम्हारे पर भी मैंने जुल्म हराम कर दिया। यानी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ये ना समझे कि मेरी कोई नेकी आए वो तो आई ही नहीं, वो तो भूल गया कोई लिखना फरिश्ता, वो तो यहाँ पहुंची नहीं। हर चीज ही लिखी है, मिसकाला जर्रा तिन, सब चीजें खैर हो या शर हो तो जर्रे के बराबर भी चीज लिखी होगी तो कोई कैसे चीज रह जाएगी। अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। बाज दफा इस दुनिया में जब लोगों को अल्लाह ताला की हिकमतें पता नहीं होती तो वो अल्लाह के फैसलों पर एतराज करते हैं। हाय फलानी जगह पे सैलाब क्यों आ गया, फलां जगह पे जलजला क्यों आ गया, फलां बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, उन बच्चों का क्या कसूर, हाय क्यों जुल्म हुआ। नहीं, याद रखिए अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता। ये अब ये अकीदा कमजोर होता है ना, बाज लोग दीन से मुर्तद हो जाते हैं, दीन से फिर जाते हैं, ईमान गवा देते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि जुल्म हो गया मेरे साथ, जुल्म हो गया मेरे बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों बीमार हो गया, दुनिया से क्यों चला गया, तो मेरे साथ जुल्म हो गया, मैं नहीं अब मानता किसी चीज को। हालांकि अल्लाह ताला कभी जुल्म नहीं करता किसी एक पर भी नहीं, ना करता है ना करेगा। ठीक है, इस बात को ज़हन में बिठा ले और कुछ भी आप देखें कुछ भी हो जाए आपको लगे कि ये क्यों हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ऐसा क्यों, इसका क्या कसूर था, तो हमेशा याद रखें मुझे नहीं समझ आ रही तो मेरी अकल की कमजोरी है, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। इसको पल्ले बांध लें प्लीज, इस चीजों के ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर एतराजात मत करें क्योंकि अल्लाह जुल्म नहीं करता। और वो जरूरी नहीं हमें कोई बात की हिकमत समझ ही आ जाए, सो सकता है हमें कभी भी ना समझ आए। आजकल अगर बच्चों के साथ किसी गरीब मिस्कीन के साथ कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बुराइयां तो बड़े करते हैं तो इनके साथ क्यों फिर ऐसा हो गया, वो तो अमीर लोगों के कसूर ज्यादा है, ये तो बेचारे गरीब लोग थे इनके साथ क्यों। नहीं, आपको नहीं पता है। अल्लाह ताला बस जुल्म नहीं किसी के साथ करता। और यही देख लें कि अगर एक बकरी को भी, बेसिंग बकरी को सींग वाली ने मारा हुआ, उसको भी अल्लाह ताला इंसाफ दिला देगा, तो फिर आपका मतलब है कि किसी से इंसाफ नहीं होना, कोई रह जाएगा? अगर बकरी तक के साथ इंसाफ हो रहा है तो जानवरों में भी इंसाफ होगा। एक बिल्ली को किसी ने ऐसे भूखी मार दिया है कि औरत ने, वो उसकी वजह से जहन्नुम में चली जाएगी, क्या इंसाफ नहीं अल्लाह दिलाएगा, बदले दिलवाएगा और इंसाफ होगा उस दिन? उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकुल्ला लिल मलाइका तस्जुदू लि आदम फसजद तू इल्ला इबलीस। अब यहाँ पे वो स्टोरी आई है जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और सूरह बकरा में भी पढ़ी, सूरह आराफ में भी पढ़ी है हमने। तो अब ये स्टोरी तकरीबन चौथी दफा आ रही है यहाँ, हम इसकी डिटेल तो देख चुके हैं, मगर यहाँ पे आने का क्या मकसद है? बाज़ गैर मुस्लिम लोग ना, जब इनको रब्त नहीं कुरान का समझ आता, तो कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आती, एक बात होती फिर दूसरी फिर तीसरी होती है, तो एक बुक की तरह नहीं होती, जैसे बुक में एक जैसे एक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उसके बाद आगे स्टोरी ऐसे लेके चली जाती है, उस तरह से नहीं है, एक बात है तो दूसरी। तो बाज़ तो सूरतें ऐसी हैं जैसे सूरह यूसुफ है, उसमें कहानी है तो सारी पूरी एक तरह से लेके गई गई लेके जाई गई, लेकिन अदरवाइज कुरान पाक में एक बात आती है, दूसरी आती है, तीसरी, कि क्यों ऐसे है? इसलिए कि कुरान एक बुक नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला बात कर रहा है, और बातों बातें हम ऐसे नहीं करते जैसे हम बुक में लिखी होती हैं बातें, हमारी बातों का स्टाइल अलग होता है, एक बात करते हैं दूसरी होती है तीसरी होती है फिर पहली की तरफ जाते हैं, फिर ये सब इस तरह हमारी बातचीत होती है। तो और ऐसा नहीं है कि कोई रब्त नहीं है, बल्कि अब अगर गौर किया जाए ना तो रब्त निकलता है पीछे से। अब मसलन यहाँ पे आदम और इब्लीस की बात आ गई, तो कहाँ से ये बात आ गई? असल में पीछे भी बात चल रही है तकब्बुर की, बड़ाई की, उस बाप वालों ने ऐसा किया, फिर मुशरिकीन ने मक्का ये समझते थे कि हम इन लोगों के साथ क्यों बैठे, वो बहुत अपने आप को बड़ा समझते थे, तो तकब्बुर और अल्लाह की नाशुक्री कहाँ तक पहुंचा देती है? ये आज से तकब्बुर की साइकी नहीं है, ये जब से आदम को पैदा किया था उस वक्त ही देखो फिर इसने इब्लीस ने क्या किया था। तो जब हमने कहा फरिश्तों से आदम को सजदा करो तो सजदा किया सबने सिवाय इब्लीस के, ये बात हम देख चुके हैं पहले। काना मिनल जिन, ये वाहिद मुकाम है कुरान पाक में जहां पे ये बताया गया कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन था। वो सब सारे फरिश्तों को ऑर्डर दिया गया तो वो उनके साथ रहता था, लिहाजा उसको भी ऑर्डर मिला था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो फरिश्ता था। बाज ईसाई ईसाइयों के अंदर ये अकीदा है, वो कहते हैं इब्लीस भी फरिश्ता था जो बाद में खराब हो गया, हालांकि इब्लीस तो फरिश्ता था ही नहीं, ठीक है? तो वो क्या ना मिनल जिन, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया वो जिन्नों में से था। फसक अन अमरी रब्बी, तो उसने नाफरमानी की अपने रब के हुक्म की, जब अल्लाह ताला ने उसको यह हुक्म दिया तो उसने नाफरमानी की, उसने इस हुक्म को नहीं माना, और उसने क्या कहा था, ना खैर उम्मीद, मैं इसे बेहतर हूं, अफतत्तखिज़ूना हुवा ज़ुर्रियतहु औलिया। अब यहाँ पे जो बात बतानी मकसूद है वो ये कही गई, हर जगह पे आप देखेंगे इस वाक्य को, कुछ बात कोई चीज बताने के लिए इस वाक्य को लाया गया, यहाँ पे क्या चीज बतानी है कहीं दूसरी जगह हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे किसी और तरह इसको डिस्क्राइब किया गया, यहाँ पे कि क्या तुम उसको और उसकी औलाद को औलिया बनाओगे, मिन दूनी, मुझे छोड़ के, मेरे सिवा, वहुम लकुम अदुव, हालांकि वो तो तुम्हारे दुश्मन है, बिस अल जालिमी ने बदला, कितना बुरा है जो जालिमों ने अल्टरनेट ढूंढा है, जो रिप्लेसमेंट की है, कि बजाय अल्लाह को अपना वली बनाते इस इबलीस को और इसकी औलाद को अपना वली बना लिया। वली कौन होता है? मददगार, गार्डियन, दोस्त, ये सब वली के माने। अब देखें जो लोग सैटनिक वर्शिप करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, वो तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, छोटी सी तादाद है जो बाकायदा कहते हैं, मुंह से बोल के कहते हैं कि हम शैतान की पूजा करते हैं, ठीक है, उन्होंने तो औलिया बनाया ही है शैतान को और उसकी औलाद को, मगर इसके अलावा इनडायरेक्टली भी औलिया बनाई जाती हैं, और वो कैसे, जब के शैतान के रास्ते पर कोई चलता है, जब के अल्लाह के रास्ते को छोड़ोगे तो वो शैतान का ही रास्ता है। याद रखें, ऐसा नहीं है कि एक इंसान अल्लाह के रास्ते पे भी और शैतान के रास्ते पे भी है, दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। जब जब आप अल्लाह के रास्ते को छोड़ोगे तो दूसरा रास्ता शैतान का ही है, वो चाहे किसी नाम से भी हो, किसी नाम से भी हो, वो शैतान का रास्ता है, वो किसी और का रास्ता नहीं हो सकता। कोई दरमियाना रास्ता नहीं है कि अल्लाह और शैतान दोनों का ये वाला रास्ता, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, समझ आई बात। तो लिहाजा जब कोई इंसान अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है, अल्लाह की बातों का इनकार कर देता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, तो वो लाजमी शैतान की पैरवी कर रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे हमें एक एक सवाल किया गया कि क्या तुम ऐसे को अपना वली बनाओगे जो कि जिसने तुम्हारे बाप की से नफरत की, दुश्मनी की, उसकी तकरीम को उसको काबिले तकरीम नहीं समझा, वो क्या तुम्हारा दोस्त हो सकता है? याद रखिए, इब्लीस ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों का सिर्फ दुश्मन है, वो बनी आदम का दुश्मन है, इंसानियत का, पूरी आदम की औलाद का दुश्मन है। और सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं, तो उसने कहा था कि मैं इन सबको बहकाऊंगा, वो पूरे बनी आदम का दुश्मन है। तो लिहाजा ऐसे ये अब जो लोग उसके साथ दोस्ती करते हैं या उसकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इनका खैरख्वाह बन जाता है, वो उनको भी बर्बाद कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है। देखिए, एक वो दोस्ती होती है कि इंसान अपने दोस्त को फायदा देना चाहता है ना, उसकी खैरख्वाही करता है, लेकिन ये ऐसा है कि ये जो इसके पीछे चलते हैं, ये उनको भी तबाह करता है, उनको जन्नत में थोड़ी लेके जाएगा, उनको भी जहन्नुम में ही लेकर जाता है, तो उनकी तबाही ही चाहता है ना। और ये बनी आदम सारी का दुश्मन है, इससे अंदाजा लगाए कि एक न्यू बॉर्न बच्चा जब होता है तो उसको भी ठोका लगाता है, क्यों, हालांकि उसके साथ इसकी क्या दुश्मनी है, तो बेचारा अभी पैदा हुआ है, उसने क्या किया, उसने तो अभी कुछ भी नहीं किया, मगर इतनी इसको दुश्मनी है, इतना इसको बैर है इंसान से कि वो उसको भी कचोका लगाएगा। और हमें ये पता चलता है, जैसे हम सबको इसकी स्टोरी पता है, मगर इस तरह से एक और एंगल से भी देखते हैं हम आज के, देखे उसने एक गुनाह किया, फिर वहां से दूसरा, तीसरा, तकब्बुर, हसद, अपनी बड़ाई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सामने बेअदबी, फिर अपने गुनाह पे इसरार, ये नहीं, फिर तौबा ना करना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए, एक से दूसरा गुनाह पे जाना ये आसान हो जाता है, जब इंसान एक गुनाह करता है ना तो दूसरा, फिर तीसरा, या फिर ऐसा होता है कि एक गुनाह किया वो छोटा था, फिर उससे बड़े पे चलता है, फिर उससे बड़े पे चलता है, फिर इस तरह उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है गुनाह का, या फिर क्वांटिटी बढ़ती जाती है एक के बाद दूसरा दूसरा। तो यहां से हम ये सीखते हैं कि देखो, इसने एक किया था, वो एक नहीं रहा, फिर वो आगे कितना मल्टीप्लाई हुआ और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता चलता है कि इंसान को डरना चाहिए कि मुझे नहीं पता कौन सा गुनाह मुझे हलाक कर दे। देखिए ना, इसने इतनी नेकियां की, इतनी नेकियां की, लेकिन एक गुनाह था जिसकी वजह से ये टर्निंग पॉइंट हो गया इसकी जिंदगी का, कि कहां ऊंचाई से गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर इसको जमीन तक नहीं मिली, कि इस गड़े में गिर गया। तो पता नहीं होता कौन सा गुनाह है, कौन सी बात मुंह से निकल जाए, कौन सी हरकत मुझसे हो जाए, कौन सा एक गुनाह जो इंसान ना बड़े मामूली समझता ना, फिर क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं आपको क्या पता कौन से फर्क पड़ जाता है, आपको क्या पता। इसी तरह कौन सी नेकी भी इंसान हकीर समझता है ना, कि इस नेकी से क्या होगा, नहीं आपको नहीं पता कौन सी नेकी आपको जन्नत में ले जाए, इसी तरह कौन सा गुनाह आपको अल्लाह की नजरों में गिरा सकता है, ये नहीं इंसान को पता होता। और इंसान बेपरवाह के गुनाह कर लेता है, जैसे वो एक आदमी था उसने कहा इतनी 100 साल तक अल्लाह की इबादत की, और उसके बाद उसने किसी को गुनाह में देखा तो उसने कहा तू बाज आ जा, फिर गुनाह में देखा फिर कहा बाज आ जा तौबा कर, फिर गुनाह में देखा फिर कहता अब तेरे अल्लाह ताला ने तेरी तौबा को कभी कबूल नहीं करनी, खुदा की कसम अब तेरी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कौन होता है कि मेरे ऊपर बात लगाए। उन दोनों की जान कब्ज कर ली, करवाया, जो जिसने मेरे ऊपर ये फैसला दिया उसको फरमाया तेरी सारी नेकियां जाया कर दी गई, और जिसको जो बार बार गुनाह करता था फिर तौबा करता था फिर गुनाह कर लेता फिर तौबा कर लेता था, अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे जा तुझे तुमने माफ कर दी। आपको नहीं पता कौन सी ऐसी बात ना मुंह से निकल, ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो बाज लोग बड़े नेक होते उसके बाद कोई ऐसी बात कोई ऐसा गुनाह हो जाता है उनसे जिंदगी बदल जाती है, पता नहीं किस रास्ते पे चल पड़ते, अच्छे भले होते हैं पता नहीं क्या उनको ऐसा हो जाता है, तो कोई गुनाह होता है उसके पीछे दिल ही बदल जाते हैं, इधर इधर से नफरत ही हो जाती है, नमाज छोड़ सब छोड़। इस तरह नेकियों में भी नहीं आपको पता कौन सी नेकी कभी इंसान जो है, वो बिशर हाफी का नहीं आपने वाक्य सुना, इतने शराबी थे शराब में धुत रहते थे, एक दिन जा रहे हैं अल्लाह का नाम देखा कागज के ऊपर लिखा हुआ उठाया उसको खुशबू लगाई और ऊंचा करके रख दी कि मेरे अल्लाह का नाम है, तो किसी के ख्वाब में आया कि बिशर को खुशखबरी दे दो कि जिसने हमारे नाम की ताजीम की हम इसको बुलंद कर देंगे, वो इतने बड़े अल्लाह के वली बने, वो ढूंढता आया कहाँ है शराब, पता चला शराब खाने में शराब में धुत पड़े, वो ही उनकी जिंदगी का वो दिन था कि बदल ही गए, कि किसी ने कहा कि ये मुझे ख्वाब आया तो जिंदगी उनकी बदल गई कि मेरे अल्लाह ने मेरे मेरे जैसे बंदे के लिए ये कह दिया। तो याद रखें गुनाह का हमें नहीं पता होता कि कौन से गुनाह की नहुसत ऐसी हो जाए कि वो इतना इम्पैक्ट करे जिंदगी के ऊपर कि जिंदगी खराब होके रह जाए, और कौन सी नेकी ऐसी हो जाए कि जो के कहां से कहां पहुंचा दे। तो इबलीस की कहानी से हम ये सीखते हैं कि गुनाह छोटे ना समझो या मामूली ना समझो, कौन सा गुनाह हिट बैक कर जाए कब जाके ये भी नहीं पता होता। एक आलिम कहते हैं कि मैं एक रात सोया और सुबह को मैं उठा तो कुरान में से मुझे कुछ भी नहीं याद था, सब भूल गया, वाइप आउट हो गया, और मुझे पता है मैं जानता हूं कि वो मेरा एक गुनाह था जो 20 साल पहले मैंने किया था, ये उसका नतीजा है। हम तो भूल ही जाते ना, लेकिन इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला तो खात में वो तो नहीं भूलता। और फिर ये देखिए आदम अलैह सलाम को अपने गुनाह की निदामत थी, गुनाह की निदामत थी ना, और इतनी निदामत उनका गुनाह माफ भी हो गया, लेकिन हशर के मैदान में भी वो कहेंगे कि नहीं मुझे अपना वो गुनाह याद है, मैं उसकी वजह से आज जाके सिफारिश नहीं कर सकता। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, छोटी छोटी बातें हैं, जरा जरा सी खताएं, लेकिन सोचे वो वहां पे भी डर रहे होंगे जबकि माफियां मिल चुकी उनको, कोई इस चीज की थोड़ी पकड़ थी, अब माफी तो मिल चुकी फिर भी, तो हम कैसे ना डर होके बैठ जाए, जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े काम किए जिनको ये भी नहीं याद के क्या क्या कर बैठे। तो याद रखे इबलीस भी एक दिन बड़ा नेक था, और वो ऐसे ही नहीं एक गुनाह ही था ना जिसने उसको क्या क्या करके रख दिया। और नेकी की एक मिसाल देखें, वो बुखारी में भी हदीस आती है, अरसल ने फरमाया एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसको एक कांटेदार शाख मिली रास्ते में पड़ी हुई थी, उसको लगा कि ये किसी को कांटा ना चुभ जाए, तो उसने उठा के एक तरफ कर दी, अल्लाह ताला ने इतनी कदर की उसकी इस बात की कि उसको बख्श दिया, सुभान अल्लाह। तो कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, हम ये तो बहुत सोचते रहते हैं, पता नहीं मुझे कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, देखो तो वो तो फाहिशा औरत की भी तो कुत्ते को पानी पिलाने के पर बख्शिश हो गई थी, मेरी भी पता नहीं किस पर, लेकिन ये तो नहीं सोचते कभी कि कौन सा पता नहीं मेरा गुनाह मेरे आगे ना आ जाए, इससे नहीं डरते बिल्कुल। शैतान ने कहा है ना फिक्र ना कर दे, कोई तो नेकी हो ही गई होगी पास में जिसका खुद भी नहीं पता, उससे तसलिया दिला देता उसका भी तो माफ हो गया था तेरा भी इसी तरह माफ हो जाए, लेकिन गुनाह की तरफ नहीं लेके जाता कि तुझे क्या पता तेरा कौन सा गुनाह ना तेरे आगे आ जाए। तो इसलिए गुनाहों से भी बचने की और डरने की जरूरत है। और ये देख लें कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो गुनाह किया था ना, तो शैतान ने तो कहा था कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, और उनको ये था कि फरिश्ते देखो अल्लाह की कितनी अच्छी इबादत करते हैं ना, खाना पीना ना सोना उनको कुछ भी नहीं है, इतने यकसू होके बस अल्लाह की इबादत करते हैं, तो मैं भी फरिश्ता बन जाऊंगा, मैं भी अल्लाह की ऐसी इबादत करूंगा। नीयत तो उनकी ऐसी बुरी वाली नहीं थी, फिर भी पकड़ हुई है। हम बाज दफा कहते हैं मेरी नीयत तो अच्छी है, मैंने क्या गलत किया, मेरी नीयत तो अच्छी है, लेकिन गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो ऐसी नीयत का क्या करना जिसके बाद अल्लाह की नाफरमानी हो। तो नीयत भी अच्छी हो और काम भी अच्छा हो, दोनों चीजें जरूरी हैं। कभी ये ना सोचे नीयत अच्छी है काम ना भी अच्छा हुआ तो गुजारा चल जाएगा। और फरमाया तुम्हारा दुश्मन है वो, तुम उसको दुश्मन समझो ना, उसको हम दुश्मन नहीं समझते, शैतान को एक रियलिटी नहीं समझते, तो उसको औलिया मत बनाओ। सिर्फ ये ही नहीं है कि शैतान की इबादत नहीं करनी, उसका कहना नहीं सुनना, उसकी बात का इनकार करना जरूरी है, उसकी इताअत नहीं करनी। और शैतान ने देखे उसका रवैया क्या था, कैसा था, कि उसने अल्लाह ताला की हिकमत और उसके फैसले को क्वेश्चन किया था कि ये कैसा हुक्म दे दिया, ये तो मेरे से कमतर है, आपने इसको सजदा करने का हुक्म दिया, तो उसने अल्लाह ताला के यानी अल्लाह के हुक्म के ऊपर ना सवाल उठाया था। आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं उठाया, अल्लाह तूने मुझे एक उसका क्या कर दे, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या फर्क पड़ता है इसको खाने से, भला ये सारे दरख्तों का काबा ये कोई खास है भला दरख्त की, इसका मुझे क्या दिया, ये कैसा हुक्म हुआ, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये शैतानी रवैया होता है जब इंसान अल्लाह के फैसले को या उसके हुक्म को क्वेश्चन करता है कि क्यों अल्लाह ने ये हुक्म दिया, समझ की वजह से नहीं, एतराज की वजह से। तो ये किस किस्म का हुक्म है, ये तो समझ आता नहीं है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भला क्या लॉजिक हो सकती है, ये क्या बात हुई, इस तरह की बातें शैतानी रवैया। तो बाज गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से दूर कर देने वाले होते हैं, जैसे इबलीस अल्लाह से दूर हो गया, फिर तो अपने गुनाहों का जब भी इंसान सोचे तो पशेमान होना चाहिए और इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि सारे ही आजकल तो करते हैं तो क्या हो गया, मैंने कर लिया तो कौन से ऐसी बड़ी चीज हो गई है, कभी नहीं कहना चाहिए। और कभी ये भी ना कहें कि कोई बात नहीं, अगर 4 दिन जहन्नुम में रह भी गए तो उसके बाद तो जन्नत में चले ही जाएंगे ना, ये बहुत बड़ा कलिमा है जो कोई मुंह से कहता है, ये तो अल्लाह के अजाबों को चैलेंज करने वाली बात है, कि जैसे मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता, तो समझ नहीं है ना हमें, इसलिए कह देते। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि क्या इस इबलीस के बारे में, जिसमें तुम्हें बता दिया कि शुरू दिन से उसने तुमसे दुश्मनी की, शुरू दिन से उसने कहा मैं इसको बहकाऊंगा, शुरू दिन से वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है, क्या तुम उसको दोस्त बनाओगे, अब उसके पीछे चलोगे, तुमने कितनी बुरी रिप्लेसमेंट की कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम को छोड़ के तुम इसके पीछे चल पड़े। दुश्मन को भी कभी कोई दोस्त बनाता है दुनिया में, कभी देखा है कि दुश्मनों को लोग दोस्त बना के बैठ जाए। मा अशहद तुम खल्क समावाती वल अर्द वला खल्क अनफुसी, नहीं मैंने हाजिर किया था इनको आसमानों की पैदाइश में और जमीन की और इनके नफ्सों की पैदाइश में, यानी जब इनको पैदा किया था, जिनको तुम पूज रहे हो आज, जिनके पीछे चल पड़े हो, चाहे वो शैतान इबलीस है, चाहे उसके उसकी जुर्रियत है, उसके औलाद है, और यहां से ये भी पता चलता है कि शैतान की भी औलाद है, इससे पता चलता है कि उसकी भी औलाद है, और जब भी शैतान के पीछे चलेंगे तो मिन दूनी मुझे छोड़ के, इसका मतलब हमेशा अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा जब शैतान के पीछे चलेंगे, तो आप कभी नहीं ऐसे कर सकते कि अल्लाह को भी राजी कर लें शैतान को भी, शैतान तो तभी राजी होगा जब अल्लाह नाराज हो, आप इतनी बात से सोच लेना। ये देख छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ, और बातों पर तो आप, एक बड़ी ऑब्वियस मिसाल है, जहां पर कहा गया हमें कि औरतें अपने टखनों को ढांपे और मर्द टखने नंगे करें, आप दुनिया में देख लें, औरतें हैं जो टखने नंगे करके फिर रही हैं और मर्द जो है वो टखने कवर कर रहे हैं, अब आपको पता नहीं चलता कि पीछे देखो शैतान की, जो काम अल्लाह ताला बताएगा ना, ये हालांकि ऐसी चीज है कि जो दीन की या इसकी एक लिबास का मामला है, कोई नमाज रोजे इसकी बात नहीं है, इबादत की बात नहीं करी, लेकिन आप हर जगह देखेंगे जो हुक्म आ जाएगा ना बस उससे ऑपोजिट ही शैतान ने कराना है, कभी ऐसे नहीं होगा। और भी बहुत चीजों पे मैंने नोटिस किया है कि आम जो अहकामात डेली लाइफ से हैं उनसे ऑपोजिट करना वो शैतान इंसान से कराता है। अब देखें तो जो भी इसके पीछे चलने वाले हैं, शैतान को पूजते हैं या अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजते हैं, वो ये तो सोचें कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तो इनको हाजिर नहीं, जिस वक्त मैंने आसमान जमीन बनाए थे उस वक्त इन्होंने बनाने क्या थे, ये तो उस वक्त थे भी नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस वक्त जब मैंने आसमान और जमीन बनाए थे, वला खलका अनफुसिम, और ना जब इनको पैदा किया था ना तो तब भी नहीं, इनको कुछ पता नहीं कि हम कैसे बने कैसे दुनिया में आए। जिनकी भी पूजा की जाती है चाहे वो कोई औलिया अल्लाह हो, पैगंबर हो, फरिश्ते हो, या कोई बुत हो, या कोई और जितने लोगों को लोग पूजते हैं, कोई भी हो, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त नहीं थे जिस वक्त मैंने ये बनाया, तो ये मालिक कैसे बन गए इन चीजों के, इनकी फिर क्यों इबादत करते हो? मालिक तो वही होगा ना जो खालिक होगा, जिसने पैदा किया, ये तो उस वक्त थे भी नहीं। ममा कुंतु मुत्तखिज़ अल-मुदल्लीन आदुदा, तो नहीं हूं मैं कि हम मदद लेने वाला, मददगार बनाने वाला, गुमराह करने वाले लोगों को, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला वैसे मदद किसी से लेनी ही नहीं है, मगर अगर उसने लेनी होती भी तो जो लोग गुमराह करने वाले हैं उनसे लेनी थी, यानी ये लोग जो लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं शैतान और इसकी औलाद, इनसे उसने मदद लेनी थी बनाने में कोई चीज, तखलीक करने में, तो यहां से निगेट किया गया शिर्क को, सारे के सारे शिर्कों के, कैसे इनको अल्लाह के साथ पार्टनर बताते हो कि पार्टनरशिप इनकी भी है, इनकी क्या पार्टनरशिप है, वो कहते थे लात और उज्जा अल्लाह के मददगार है, इनको मददगार बनाना था अल्लाह, और यौमा यकुलु नादु शुरका ये अल्लदीना जाम, तो फिर ले जाया गया वहां खड़ा कर दिया गया मैदाने माशर में कि जिस दिन वो कहेगा, कौन अल्लाह ताला कहेगा या उसके फरिश्ते कहेंगे, नादू शुरका ये लजीना जाम, तो पुकारो, निदा होती है जोर से पुकारना, जोर से किसी को आवाज देना, तो पुकारो मेरे शरीकों को जिनको तुम समझते थे कि वो मेरे शरीक है, वो अल्लाह के शरीक नहीं, लेकिन अल्लजीना जाम तुम समझते थे कि वो मेरे शरीक है, उनको पुकारो, इस यानी इन लोगों को कहा जाएगा कि आप तुम इनकी चाहे शैतान की पूजा करते थे या जिसकी भी, तो अब बुलाओ उनको ताकि तुम्हारी हेल्प करें ना, यहाँ पे अब तुम फंसे हुए हो तो यहाँ पे उनको पुकारो, तो फदाओ, वो पुकारेंगे, वो बुलाएंगे उनको, हो सकता है दूर इतने हो तो इसलिए कहा गया कि उनको निदा दो, या हो सकता है कि वो डेस्परेशन के अंदर, कि आप तुम इतनी मुश्किल के अंदर हो तो जरा पुकारो उनको, जोर से बुलाओ, तो वो पुकारेंगे उनको, फलम यस्तजी भूला हूं, तो वो नहीं जवाब देंगे उनको, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, हम नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं, कुछ तो बोलो, कुछ जवाब ही नहीं होगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। और आप खुद सोचें कि जिन के ऊपर भरोसा किया कि ये बचाएंगे, ये वहां पे मददगार होंगे, वो जवाब तक ना दे, आप अपने बच्चे को आवाज देते हैं ना, वो जवाब ही ना दे, आपने अभी काम क्या कहना है वो जवाब ही ना दे, तो कितना गुस्सा आता है कि तुम मुझे जवाब तो दो, तुम मुझे बताओ तो सही, वो जवाब ही नहीं आगे से देंगे, तब वजालना बैना मऊबिका, और उनके दरमियान हलाकत कर दी जाएगी, हायल कर दी जाएगी, इनके किन के दरमियान, ये जो इबादत करते थे और जिनकी इबादत की जाती थी उनके दरमियान, और मऊबिक क्या है, बाज जगह डिस्ट्रक्शन, हलाकत, हलाक करने वाली चीज, तो शायद कोई वादी है जो हलाकत की वादी, वो इनके दरमियान हायल कर दी जाएगी, बाज जगह है कि जहन्नवियों का पीप और खून है उससे भरी हुई एक वादी होगी, एक गड़ा होगा जो इनके दरमियान हायल कर दिया जाएगा, यानी एक हलाकत गाह दरमियान में होगी इनके दरमियान, ऐसी चीज होगी कि उसको फिर वो उन तक जा नहीं सकेंगे। तो यानी उस दिन इनकी रुसवाई के लिए ये किया जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि जहां पे वो सब कोई जमा किया जाएगा, आप सोचेंगे जानवरों को क्यों जमा किया जा रहा है, उनका क्या हिसाब किताब, उनको तो जन्नत जहन्नुम थोड़ी है उनके लिए। तो इसलिए नहीं कि उनको जन्नत में या जहन्नुम में डालना है, इंसाफ को दिखाने के लिए कि अल्लाह ताला हिसाब किताब लेने वाला है, इवन उनका हिसाब किताब लेगा तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारा नहीं होगा, जिनको अकल शऊर और सब कुछ है। तो इस तरह यहाँ पे भी इसलिए नहीं कहा जा रहा कि पुकारो उनको वो आए तुम्हारी हेल्प करे, इसलिए ताकि इनको दिखाया जाए कि वो भी कितने बेबस हैं और उन वो आज किसी काम आने वाले नहीं, और इनको दिखाया जाए कि हम आज कितने मोहताज हैं, कि आज हमें किसकी जरूरत है, वो उसकी जिसकी हमने कभी पूजा नहीं की, और ये कितने गलत है। तो उनको प्रूव कर दिया जाएगा कि जिनके पीछे ये लगे रहे वो सब किसी काम के नहीं थे, दुनिया में ही देख रहे हैं वो मिजार वो कब्रें जहां लोग जाके चादरें चढ़ाते और कहते थे ये हमारे काम आएंगे, ये हमारे बच्चे देंगे, हमें सेहत देंगे, ये हमें हमारे काम बनाएंगे। आज उनके मिजार पानी के अंदर, फ्लड के अंदर डूब चुके हैं, वो तो अपने मिजारों को भी नहीं पानी से बचा सके, तो कैसे वो इनकी हाजतें पूरी करेंगे। इस इंसान को दुनिया में भी अल्लाह दिखाता है पर बंदा समझता ही नहीं है बात। वो इतने ताकतवर होते तो अपनी कब्रों से तो दूर रख लेते पानी को, इतने ताकतवर होते इनके तो काम कर रहे थे तो वो अपने आस्थानों को तो बचा लेते, वो सारे डूबे पड़े। अल्लाहु अकबर। वरा अल मुजरिमून अन्नार, फिर वो मुजरिम जो है जब आग को देखेंगे, अब जाहिर है अब जो करके आए उसके बाद अब इनके सामने आग है, आग को देखेंगे तो देखते ही उनको पता चल जाएगा, फजन्नु अन्नहुम वाकिउहा, तो वो समझ जाएंगे कि वो गिरने वाले हैं। कैसे समझ जाएंगे, उनको कैसे पता है कि हम इसमें गिरने वाले, इसलिए कि वो जिनके ऊपर भरोसा करते थे वो तो जवाब भी नहीं दे रहे, और इसलिए कि वो खुद जानते हैं कि वो किसको पूज के आए हैं और वो यहाँ पे कोई काम नहीं आ सकते, क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसने क्या किया। हर इंसान, क्या हमें नहीं आज पता कि हम कितने पानी में, हम क्या क्या करते रहे हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, और हमारी जिंदगियां किस में गुजर रही हैं, और आखिरत के लिए हम कितना बना रहे हैं, कितना घुल रहे हैं, कितनी फिक्रें, हमारी परेशानियां कितनी ज्यादा है आखिरत के लिए, हम कितना तड़पते हैं आखिरत के लिए, हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती क्योंकि हम इतना सोचते हैं, हमें इतनी फिक्र रहती है हर वक्त, हमारे इतने जहन पे सवार रहती है आखरत, हमारा सबसे बड़ा गोल ही है कि हम आखरत में कामयाब हो जाएं। हमें अच्छी तरह पता है कि कितना कि ये सब कुछ है, बहुत अच्छी तरह पता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए ना, बल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा वाला वो अल्का माजीरा, इंसान को अच्छी तरह पता है, अच्छी तरह वो जानता है चाहे वो कितनी माजरतें दी, उसको खुद नजर आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो हर कोई जानता है, उनको भी पता होगा कि अब हमने जो कर दिया है अब हमारे पास बचने का तो कोई मौका नहीं है, वलम यजिदु अन्हा मसरिफा, और वो नहीं पाएंगे उससे भागने की कोई जगह। मुसनद अहमद में है कि 40 साल की मसाफत से ही जहन्नमी को पता चल जाएगा कि मैं रास्ता बदल नहीं सकता, वो जानता होगा जिस रास्ते पे यही उसको ले जाया जा रहा होगा ना जहन्नम की तरफ, उसको सामने जहन्नम नजर आ रही है। अब देखें कुछ किसी को मुसीबत नजर आ रही हो वो क्या करता है, एक मुजरिम भी दुनिया में होता है ना वो हर तरफ से भागने की कोशिश करता है, चाहे उसको कह देते हैं तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, वो फिर भी कहता है कि मैं किसी तरह हाथ पैर मारूं मैं कहीं से बच निकलूं, मुझे ये पकड़ ना सके। क्या बात होगी कि वो जहन्नुम की जैसी बला को देख रहा होगा और उसकी तरफ चलता जा रहा होगा, वो कहीं भाग ही नहीं सकेगा, कहीं नहीं जा सकेगा। इसमें इब्ने कसीर में हदीस है कि 5,000 साल तक काफिर इसी थरथरी में रहेगा कि वो जहन्नुम को अपने सामने पाएगा और उसका कलेजा काबू से बाहर होगा, वो थर थर कांप रहा होगा, कोई भागने की जगह नहीं। 5,000 साल उसके ऊपर, सोचे कि एक है कि उसके अंदर चले जाना, एक है उसको देख रहे हैं और इंसान की जान निकल रही है कि मैं अब इसके अंदर जाके गिर जाना है, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता, कहीं कहीं छुप ही नहीं सकता। नो वे आउट, कोई जगह ही नहीं है, और उसको समझ आ जाए कि मुझे, मैं इससे बच नहीं सकता। हालांकि दुनिया के अंदर मुजरिम कहते हैं कहीं ना कहीं से हम निकाल ही नहीं रास्ता, लेकिन इसको पता है कि मैंने इसमें ही जाके गिरना। तो उसमें सूरह मुल्क में भी आता है ना कि वो जहन्नुम इतनी चिंगाड़ रही होगी, इतनी उसकी आवाजें होंगी, उसकी जफीर और शहीक और ये सारे उसकी आवाजों की बातें कही गई कि उसका हांपना कैसा होगा। वो इतना चीख रही होगी, हदीस में आता है कि जब जहन्नुम को, जी अयोमा इदिन भी जहन्नुम, जहन्नुम को जब लाया जाएगा ना मैदाने हशर के अंदर, तो 70,000 चेन्स में बांध के लाया जाएगा, उसको खुला नहीं छोड़ के क्या से आ जाएगी। हर चेन को कितने बड़े ह्यूज फरिश्ते होते हैं, इंसान तो बहुत छोटी सी चीज है, फरिश्ते कितनी बड़ी बड़ी, कितने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, कितनी बड़ी मखलूक और कितनी ताकतवर मखलूक है। हर चेन को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा, इतनी ताकत के साथ भी उसको वो काबू में करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो बेकाबू हो रही होगी, इतना वो आपे से बाहर हो रही होगी गुस्से में, कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जितने मुजरिम है उनको उचक ले, निगल ले एकदम, इतना उसका गुस्सा होगा। तो अब उनको समझ आ गई है कि वो गिरने वाले इसमें, वो तब भी समझ भी आ रही होगी कि हमने कहाँ जिंदगी गुजार दी, किधर हम, फिर पछतावों से क्या फायदा। गुजर गई होगी वो जिंदगी और सिर्फ हसरतें ही रह गई होंगी। अल्लाहु अकबर, वलकद सर्रफना फी हाजल कुरआन लिन्नासि मिन कुल्ली मसल। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तो इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह से मिसालें बता दी, कितनी वेरिएशन है ना, हर तरह से बता दी, कहीं जन्नत की बात, कहीं जहन्नुम की बात, कहीं इंसान को डरावा दिया गया, कहीं इंसान को शौक दिलाया गया, कहीं स्टोरीज बताई गई, कहीं अल्लाह की नियमतों का जिक्र किया गया, कहीं अल्लाह ताला के साइंस बताए गए, देखो उसकी निशानियां। किसी तरह से भी अगर कोई इंसान ना माने तो फिर क्या, हर तरह से इसको समझाया, यानी एकदम समझाने में कसर नहीं छोड़ी गई। नहीं, इसको समझना ही ना चाहे तो क्या, वकाना इंसान अक्सर शे इन जदला, इंसान मगर ऐसा है वो हर चीज से ज्यादा झगड़ा, यानी इंसान डिबेट करता है, बहस करता है, हर चीज में आगे बहस लेकर आ जाता है, हर चीज से ज्यादा। यानी इसका मतलब है कि सारी मखलूक में उलमा कहते हैं सबसे ज्यादा इंसान है कि जो बहसें करता है, बहस मुबाहसा, क्यों ऐसे, ये क्यों कहा गया, चार शादियों का हुक्म क्यों, क्या इजाजत क्यों आदमी को दी गई, जन्नत के अंदर क्यों हमको हूरें मिलेंगी, हमें क्यों नहीं कुछ ऐसे होता, आधी गवाही क्यों है औरत की, ऐसे क्यों विरासत के अंदर कम हिस्सा दिया गया हमें, इस तरह इतना झगड़ालू, इतनी बहसें, इतनी बातें, इंसान बहुत झगड़ालू है, बहुत यानी बहस करने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी और मुस्लिम में, अल्लाह के नजदीक सबसे मबहूज यानी हेटेड इंसान, काबिल नफरत वो है जो अलतुल खिसाम है, बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, झगड़े में बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो इंसान मतलब इतनी मिसालें देके भी उसको बात की गई, मगर वो ना कहीं से एस्केप चाहता है ना, तो आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता है, बहुत आर्ग्यू करता है, वैसे करता है ताकि कोई ना कोई नुक्ता निकालू ना मैं, वही पॉइंट मेरे हाथ आ जाए। आप देख ले, आप किसी बच्चे को भी नसीहत करते हैं तो वो भी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट दिस, और इस तरह करके वैसे बच्चे भी करने लगते हैं। तो यंग एज से इंसान बहसों में होता है। तो इससे हमें एक बात और समझ आती है कि ये जो है ना, ये बहसे करना जो है ये काफरों का तरीका है, मोमिन का तरीका क्या होता है, समयाना व आताना, मोमिन का भी तरीका कुरान में बताया गया, वो कहता है मैंने सुन लिया मैंने मान, वो नहीं बहसे करता। लेकिन जो इंसान अक्सरियत की क्या हालत है, वो ये करता है, हर चीज से ज्यादा झगड़ा लूंगा। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान को अल्लाह ताला ने हर तरह से मिसालें देके समझा दिया, तो आप मुझे बताइए कि कयामत के दिन पर वो क्या एक्सक्यूज ला सकेगा अल्लाह ताला के सामने, क्या कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं समझती। एक बंदा होता है ना कि इसको पता ही नहीं चला, वो कहीं ऐसी जगह पे रहता था, वो उस तक पैगाम पहुंचा ही नहीं। एक है कि घर घर में कुरान पढ़ा हुआ है, आप जाएं तो बुक शेल्फ्स में, लाइब्रेरीज में, बुक स्टोर्स के अंदर कुरान अवेलेबल है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो एक्सेस ही नहीं थी, मैं कैसे हिदायत को पाता, मुझे तो समझ ही नहीं थी। सब चीजें सबके सामने है, फिर भी कोई इंसान एक्सक्यूज दे वहां पे या यहाँ, आज कहे कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो ये एक्सक्यूज माना नहीं जाएगा। वमा माना नास युमिनु, और नहीं रोका लोगों को वो ईमान लाए, इस जाअहुल हुदा, जबकि उनके पास हिदायत आ भी गई। ईमान लाने से अगर हिदायत आ गई तो फिर ईमान लाने से क्या चीज रुकावट, फिर तो कुछ नहीं। हिदायत आ गई तो इसका मतलब ईमान से रुकना नहीं चाहिए। तो किस चीज ने रोका इंसानों को ईमान लाने से, जबकि हिदायत भी आ गई, और इस्तेगफार करने से, अपने रब से इस्तेगफार करने से किस चीज ने रोका। तो यानी जब हिदायत आ जाए तो ईमान लाना और इस्तेगफार करना, ईमान और इस्तेगफार क्यों साथ साथ आए, ईमान की तौहीद पे ईमान ले, और इस्तेगफार उन चीजों पे और उस शिर्क पे और उन गुनाहों पर जो पहले कर लिए उन पे इस्तेगफार कर ली और ईमान ले आए। ये होना चाहिए हिदायत आने के बाद इंसान का रवैया, मान जाना, और जब नहीं ला इल्मी में उसने जो गुनाह किए उनके ऊपर पशेमान हो जाना, ये है मोमिन का तरीका। हमारे पास भी हिदायत आई है ना, ये हमारा रवैया होना चाहिए। लेकिन लोगों को किसी चीज ने नहीं रोका ईमान लाने से और इस्तेगफार करने से, जबकि हिदायत आ भी गई। ये वो ये नहीं कह सकते हमारे पास हिदायत नहीं है, हिदायत आ भी गई तब भी वो क्यों रुके। ताती हम सुनना तो लबनी ना हो याती हूँ लादा बकबूला, कि आ जाए उनके पास वो जो पहलों का तरीका था, या आजाब आ जाए उनके बिल्कुल सामने। यानी अब इनको सिर्फ इस चीज का इंतजार है, और किस लिए नहीं ये रुके। यानी जैसे एक माँ कहती है ना कि अब तुमने अगर काम नहीं किया तो तुम्हें यही इंतजार है कि मैं तुम्हें दो थप्पड़ लगाऊं तभी तुम मानोगे, अब ऐसे नहीं तुमने मानना है ना। अब इनको यही इंतजार है कि जो पहलों के ऊपर आया, पहलों के ऊपर क्या आया, अजाब ही आ गया। आद पे, समूद पे, कौमे नूह पे, कौमे लूत पे कितने अजाब आए, तो पहलों का जो तरीका था वो वाली वो इनके ऊपर आए तभी ये मानेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले लोगों ने भी नहीं माना था, और यहाँ फिर इनके पास सामने आ जाए कि मौत का फरिश्ता ही आ जाए तो तभी ये मानेंगे, बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए मौत का फरिश्ता अजाब लेकर। तो यानी इनको बस इसी चीज का इंतजार है, ये इसी का वेट करें कि ऐसा हो जाए तभी मानेंगे ये, क्योंकि तब तो सभी मान लेते हैं। अमान उर्सिलुल मुरसलीना इल्ला मुबशिरीना व मुनजिरीन, और हमने नहीं भेजा रसूलों को मगर इसलिए कि वो बशारत सुनाए किसको, ईमान लाने वालों को, और इंतजार कर दें, वॉर्न कर दें जो ईमान नहीं लेकर आते। लोगों को हमेशा लोग कभी मौजे मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन रसूल को इसलिए नहीं भेजा जाता कि वो कोई चीजें दिखाए लोगों को, या उनकी फजूल बातों को बस उसका जवाब ही देता रहे, या उसके ऊपर उनको उनके झगड़े या उनकी बातों को बस सुन के और फिर उसके बाद उसके रिटर्न में उनकी बात को वैसे ही एड्रेस करें। उसका काम होता है बशारत देना और इंतजार करना, ठीक है। इन झगड़ों में उलझना नहीं होता, इनकी बातों को जैसे वो अब मौजा मांग रहे हैं तो फौरन मौजा लाया जाए, अब वो ये कह रहे हैं अब उनकी बात को फौरन पूरा किया जाए, उनकी डिमांड्स को माना जाए, अब ये सफा पहाड़ी को सोने का बना दें, अब ये कर दें, ये इसके लिए नहीं आते रसूल। रसूल इसलिए भी नहीं आते कि जैसे आज लोगों ने समझा हुआ कि पता नहीं यही शायद काम होगा कि जो हमारी दुआएं होंगी बस हम जाके उनको कहते रहेंगे, हमारे काम बनते जाएं, ये हो जाए काम, ये रुका हुआ काम हो जाए, बस हिदायत की तरफ नहीं आना बाकी काम कराते जाओ, तो ये इसलिए भी नहीं आते थे रसूल। फयुजादिलुल्लज़ीना कफरू बिलबातिल युदहिदू बिहिल हक, और झगड़ते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया किसके साथ, बातिल के साथ, बातिल को टूल के तौर पे यूज करते हैं और इसके जरिए हक से लोगों को फिसलाने की कोशिश करते हैं। यानी वो लोग भी क्या करते थे, कभी देखो ले आए, वो गाने बजाने वालियां लाके खड़ी कर दी, कभी किस्से लाके लोगों को सुनाते थे कि लोगों को कुरान से डिस्ट्रैक्ट करें, हक का मुकाबला किससे कर रहे हैं, बातिल से, लोगों को इससे हटा दें, हक को नीचा दिखा दे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी शायर कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे हक को किसी तरह डिरेल कर दें, ये लोगों की नजरों में इसको पीछे कर दें, या लोग इसको माने नहीं, या इसको हकीर कर दें। उसके लिए वो मजाक भी उड़ाते थे, वत्तखज़ू आयाती व मा उन्ज़िरू हुज़ुवा, और जो हमारी आयात है और जो हमारे डरावे हैं उनका मजाक उड़ाते, और बातिल के साथ हक को रद्द करने की कोशिश करते। तो बातिल के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, हक से लोगों को दूर करने की कोशिश करते थे। और आज भी आप देखें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो और इस किस्म के भटके हुए लोग हैं, उनको देखें, वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकते, कभी कार्टून बनाने बैठ जाते हैं, यानी बातिल के साथ हक का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हक किसी ने कभी मुकाबला ही नहीं किया, मुकाबला करते हैं मगर बातिल के साथ, क्योंकि उनके पास हक नहीं है। वो और कैसे प्रूव करेंगे ये गलत है, कैसे प्रूव करें कि ये सही नहीं है, कैसे लोगों को इससे हटाएं, तो उनके पास तो हक है नहीं, तो बातिल लेकर आते हैं। टीवी के ऊपर ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इतने लिबरल हैं, कुछ और इंटरप्रिटेशन करके इस्लाम की बताते रहते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हक का मुकाबला बातिल के साथ कर रहे हैं। फिर देखिए, इस तरह के ना हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब और क्या करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, जो अल्लाह की आयात है और जो अल्लाह के डरावे हैं, कभी हूरों का मजाक उड़ाएंगे, कभी ईमान वालों का मजाक उड़ाएंगे, कभी उनके हुलियों का मजाक उड़ाएंगे, कभी इस तरह, ताकि लोगों की नजर में ये चीजें नीची हो जाएं, और जब नीची हो जाएंगी तो लोग इनको जलील समझेंगे, तो लोग इनके जैसा बनना ही नहीं चाहेंगे, लोग भी इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। अब किस तरह से वो हक को ना लोगों के से दूर कर रहे हैं, लोगों को फिसला रहे हैं हक से बातिल के जरिए, उनके पास कोई ठोस चीज तो है नहीं, तो मुकाबले में क्या लाएंगे फिर वो। और हमेशा से ये रहा है, आज तक भी यही तरीका है, घटिया चीजें करके और हक का मुकाबला करने की कोशिश करना, क्योंकि उनके पास इसको रिजेक्ट करने के लिए कोई और टूल नहीं है। या फिर मनगढ़ंत ही बातें बनाते जाएंगे, कभी टेररिस्ट कह देंगे, कभी एक्सट्रीमिस्ट कह देंगे, कभी किसी तरह कह देंगे, कभी मौलवी कह के एक बात, एक स्टिग्मा, एक मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे नाम लेंगे ना, फिर उनको इतना घटिया बताएंगे बस, ताकि लोग बस इससे हट जाए, इस रास्ते से। और हम लोग भी समझते नहीं है इन लोगों की चालों को, कि देखो किस तरह से आज हमारे अपने मुसलमानों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। मन अजलम मिम्मन ज़ुकिरा बिआयाति रब्बी, उससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है फिर, जिसके सामने अल्लाह की आयात सुनाई जाए, पढ़ी जाए, उनके जरिए नसीहत की जाए, पारादान, उसको परवाह ही नहीं है, डजंट केयर, सुनता ही नहीं है, और नसीहा मकदमत ये था, और वो भूल चुका है, जो भूल गया जो उसने आगे भेजा, यानी उसने जो गुनाह किए उनको भी भूल चुका है, या अपने अंजाम को भी उसने भुलाया हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इसके बाद क्या होगा, यानी इससे बड़ा मुतकब्बिर, इससे बड़ा गुनाहगार, इससे वर्स्ट आदमी कौन होगा जो इग्नोर करता है अल्लाह की आयात को, अल्लाह ताला की आयात के जरिए उसको रिमाइंड कराया जाता है, उसको ये नहीं है कि उसको उसकी याददाश्त कम है तो वो बेचारा भूल ही गया, ऐसे नहीं है, याददाश्त अच्छी भली है, बट डजंट केयर, उसको नहीं को परवाह। तो अल्लाह ताला भी फिर ऐसों की केयर नहीं करता। जो देखिए ना, जो इंसान अल्लाह की आयात को भुला दे, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको भुला देगा, जहन्नुम में डाल के उसको भुला दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला भूल चुका वाला है, नहीं, नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला कभी नहीं भूलता, मगर मतलब क्या है कि डजंट केयर। तो ये भी नसिया, ये भी भूल गए जो इन्होंने करतूत किए हैं, यानी इनको कोई परवाह नहीं है कि हमने कितने गुनाह किए हैं, हमारा अंजाम क्या होगा, परवाह नहीं, अपने गुनाहों को ही भुला छोड़े। इससे हमें पता चलता है कि कभी भी अपने गुनाहों से इंसान बेपरवाह ना हो, हम ऑलवेज ये रखना चाहिए जहन में, चाहे जितनी भी दफा आप तौबा कर भी चुके हैं, तब भी इस चीज को जब भी याद आए, अपना गुनाह माफी मांगे, इस चीज को ये ना सोचे तो क्या हो गया था अगर मैंने कर ली, मैंने तो उस पर माफी भी मांग ली, तो कोई अब फर्क नहीं पड़ता, बेपरवाह नहीं हो, क्या केयरलेस नहीं हो। देखिए पैगंबर वहां जाके भी अपनी एक एक खता के ऊपर कितने फिक्रमंद हैं, कितने परेशान हैं। तो हम जब हमारे गुनाह याद आए, हम क्यों ना फिक्र करें, क्यों ना तौबा करें। तो मोमिन का ये रवैया नहीं होता, ये काफरों का रवैया है। और इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, जिसको जिसके बारे में ये बताया गया कि वो अपने गुनाहों से ही केयरलेस हो जाए, जो कोई फर्क ना पड़े। नेकियां तो अपनी बहुत याद रखते और फूलते रहते, और गुनाहों से परवाह ही नहीं है कोई, जैसे कि ये कोई बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं है। सो व्हाट अगर ये हो गया तो ये नहीं होना चाहिए। या ये होना कि गुनाहों को कोई बुराई ना समझना। आज ये भी रवैया ना कि गुनाह को बुरा ही नहीं समझते, तो केयरलेस है इतने गुनाह के बारे में। गुनाह हो चुका है कहते, तो ये तो कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये सबसे ही बुरी बात होती है। और ये कि इंसान को अपना गुनाह गुनाह लगे ही ना, बुला ही दे वो, उसको नसीहत भी कोई करे तो वो डजंट केयर, वो इग्नोर कर दे उस नसीहत को, जैसे मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कोई बात बताई ही नहीं है। इन्ना जानना अला कुलूबी मैं किन्ना तो नहीं अफकाउ फी आदानी बकरा। फिर इसकी सजा, जब इंसान ये रवैया रखता है ना, तो उसकी सजा इतनी बुरी है। उसकी सजा क्या है कि अल्लाह ताला फिर उनके दिलों पे गिलाफ चढ़ा देता है, कि उसको समझ नहीं आती फिर बात, कि वो समझ ही ना सके। और उनके कानों के अंदर बोझ, यानी अब उनके कानों में भी आवाज ही नहीं जाती। आवाज जा रही है, बहरे नहीं हुए, मगर बस आवाज जाती है, टकराती कानों से, और दैट्स इट, कोई असर ही नहीं है। और ये बहुत बहुत सख्त सजा इसलिए कि जब इंसान इस हालत पे पहुंच जाता है ना, तो फिर देखिए जब उसको कोई बात समझ ही नहीं आएगी और उसके कानों में कोई बात ही नहीं जाएगी, तो हिदायत कैसे पाएगा। और जब अगर हिदायत के बगैर वो मर गया, तो फिर क्या अंजाम है, जहन्नुम। वइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा। जब इनको बुलाओ फिर हिदायत की तरफ, ये कभी नहीं आएंगे। और ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने इनके साथ कुछ बुरा किया है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने पहले दिन ही इनके कानों और दिलों के ऊपर गिलाफ नहीं चढ़ा दिए थे, बल्कि इनका रवैया ये था। इनको जब बार बार जुक्कीरा आया, जुक्कीरा यानी रिमाइंडर्स बार बार दिए जाते रहे, कंटिन्यूअसली रिमाइंड कराया जाता रहा, इग्नोर इग्नोर। आप देखते ना कई लोगों टासे मस नहीं होते, मैं हैरान होती हूँ। अल्लाह या अल्लाह दिलों की सख्ती से महफूज रखना, या अल्लाह दिलों की सख्ती से महफूज रखना, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बड़ी बातें भी करते हो, तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे लगता है ये पत्थरों से आप बात कर रहे हैं, ये कोई दीवारें हैं। पत्थर भी गिर जाते हैं अल्लाह की खशियत से, पत्थर भी फट जाते हैं, उनमें से भी पानी है निकलने लगता है। लेकिन क्या बात है कि इनको असर क्यों नहीं होता, क्यों उनको बात समझ नहीं आती, वो टसे मस नहीं होते। तो अल्लाह इससे बचाए, अल्लाह ताला दिलों की सख्ती से और कानों के अंदर बोझ पड़ जाने से। बोझ सब मतलब ये है कि आप सुनता नहीं है, सील ही हो गए, दिल ही मर गए जिसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने रिमाइंडर भेजे, लेकिन इंसान जब देख लें आपके कोई इंसान गुनाह करता रहता है करता रहता है, और फिर उसके बाद उसको रिमाइंडर भी कोई भेजता है, लेकिन वो रिमाइंडर के जब वो मतलब उसको सुनाई जाती बात, वो मानता नहीं है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, वो ढीठ हो जाता है। देखा ना आपने, ढीठ हो जाता है। और फिर वो कितना भी उसको बताया जाए ना, ऐसे लगता है अभी बेअसरा नहीं हो जाता, जैसे बेअसरा हो गया। वो ढीठ आई जो होती है वो बेअसरा पाना। इसलिए जब रिमाइंडर दिया जाए, जब नसीहत की जाए, तो इंसान को कुछ हिलजुल होनी चाहिए, कुछ समझना चाहिए, वरना वो ऐसे सुन्न हो जाता है। सुन सुन के भी कहते हैं ना, सुन्न हो गए, बिल्कुल सुन सुन के वाकई फिर सुन्न हो जाता है। वही मिसाल है ये कि भाई इतना सुना सुना, नहीं टसे मासू है, नहीं कुछ हुआ, तो उसके बाद दिल साफ हो गया। अब कितनी भी बातें बताई जाए, अब नहीं कोई फर्क पड़ता। तो इसीलिए बाज रिमाइंडर्स मुसीबत की सूरत में भी आते हैं। तो अगर कभी कोई मुसीबत आ जाए ना, तब भी हिल जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, वरना फिर मुसीबत आने के बाद भी इंसान ढीठ ही रहेगा। वो मुसीबत भी नेमत है जो इंसान को रिमाइंड करा दे कि मैं इस गलत रास्ते पे चल रहा हूं, और वो अपने आप को सुधार ले। और रब्बुकल गफूर उदुर रहमा, तुम्हारा रब फिर भी गफूर है, रहमत वाला है। अगर वो पकड़ने लगे उनको, बीमा कसबू जो उन्होंने कमाई की, ला अज्जल अलहुम अलआदाब, अल्लाह ताला अगर फेयर हो ना, बाकी इंसाफ करने लगे और इंसान जो करतूत कर रहा है उसके ऊपर उसको पकड़ना शुरू कर दे कि तूने ये गलत किया इसके ऊपर पकड़ रहा हूं, ये गलत किया उसके ऊपर पकड़ रहा, तो जल्दी अभी अजाब आ जाए, अभी खत्म हो जाए सब कुछ अगर अल्लाह ताला ऐसे पकड़ लगे। लेकिन उसकी रहमत, वो रहमत वाला है, वो माफ करने वाला है, इस वजह से इंसान बचे हुए हैं। वरना जो तुम डिजर्व करते हो अपने आमाल की वजह से, जो इंसान डिजर्व करता है, तो अजाब तो अभी आ जाना था, अभी इसी वक्त। लेकिन बल्लहु मौदुन लही अजिदु मिन दूनी मौला, बल्कि एक वक्त है वादे का मुकर्रर, फिर लेकिन जब वो वक्त आ गया तो वो नहीं टलेगा फिर। तो अल्लाह ताला देखता है, वो जानता है, और उसको पता है कि लोगों का करतूत क्या है, फिर भी वो मोहलत देता है। ये उसका गफूर और उसका रहीम होना है। और हम इस चीज को ये समझ लेते हैं कि बस हम, इसका मतलब है हमें छुट्टी मिली हुई, हम गुनाह करते जाएं और बस बोलते जाएं अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, हम इसको ऐसे यूज करते हैं। हालांकि कहा गया यहाँ पे क्या, हमारा देखें, हमारी थोड़ी सी अपनी ना उसको स्ट्रेट करें, अपने जो थिंकिंग है ना उसको स्ट्रेट करें, कि हम इस सूरत में कहते हैं कि इसका मतलब अल्लाह गफूर रहीम है का मतलब है कि अब हम ना जो मर्जी करते रहें, हम जैसे मर्जी चलते रहें, हम गुनाह करते रहें, वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अल्लाह गफूर रहीम है तुम्हें मोहलत देता जाता है, वो पकड़ नहीं रहा तुम्हें इस वक्त, तुम बाहर आ जाओ। लेकिन ये ना समझना कि कोई पकड़ेगा नहीं, वो पकड़ने का एक दिन है मुकर्रर, उसने किया हुआ, समझ आई बात। ये हमारी थिंकिंग, इस आयत से हमारी थिंकिंग स्ट्रेट हो जानी चाहिए कि गफूर रहीम का ये मतलब नहीं है कि अब हमेशा के लिए खुली छुट्टी मिल गई है, अब तो पता नहीं इसी तरह रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला ने ऐसे ही रहना है, हम जितने मर्जी कुछ करते रहेंगे वो माफ करता रहेगा, हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं। नहीं, एक वक्त है, वह तिलकल कुरा लखनऊ, तुम देख लो पास्ट में ये बस्तियां हैं, हमने हलाक किया उनको, किस वजह से हलाक किया, किस वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए थे, जलजला आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड्स आ गए, वो हलाक हो गई, नहीं, लम्मा जलमू, इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया था, उन बस्तियों ने जुल्म किया था, तो हमने उनको हलाक कर दिया। कितनी बस्तियां जो हलाक हुई, इसका मतलब ये कयामत के दिन का तो पकड़ है ही है, जब इंसान जुल्म करता है इस दुनिया में भी पकड़ आ जाती है। वह जालना अली महली की मौदा, और हमने बनाया उनकी हलाकत के लिए एक मुकर्रर वक्त, इनकी हलाकत के लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया है, और वो वक्त कुरैश मक्का पे भी आया था, जिस वक्त बदर हुआ था, ठीक है, बदर में उनके बड़े बड़े सरदार हलाक हो गए थे। तो इसमें वार्निंग है उनके लिए भी कि ये ना सोचना कि बस कयामत में ही पकड़ोगी, देख लो पिछली बस्तियां कैसे हलाक हुई, इसी दुनिया में अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया था। और वाकई ये सिर्फ उस जमाने की बात ही नहीं है, कौमों की तबाही माजी में भी हुई है और आज भी हो सकती है। और इसके अंदर आप देख ले, दुनिया में जो जंगें हुई, वर्ल्ड वॉर वन में 9 मिलियन लोग मारे गए थे, वर्ल्ड वॉर टू में 60 मिलियन लोग मारे गए थे, तो ये इंसानों के अपने जुल्म का नतीजा है। आसमान से आफत नहीं आई, लेकिन ये जो अमवात इतनी ज्यादा हुई, ये भी एक अजाब की शक्ल है। तो ये इंसानों के जब जुल्म बढ़ जाते हैं ना, तो अल्लाह की पकड़ दुनिया में भी आ जाया करती है, इससे इंसान न डरना हो। और वैसे तो एक दिन है ही मुकर्रर, जिस दिन अल्लाह ताला ने सबको ही पेश करना है और ये मोहलत खत्म हो जानी है, लिहाजा इसलाह का वक्त अल्लाह ताला देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह ताला हमें हमारी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, इसी जिंदगी में अल्लाह ताला हमें मौका दे और हमें रियलाइजेशन दे कि हम अपनी आपको फिक्स कर सके और तौबा इस्तगफार करके नेक अमल कर सके, बाकियात तो सालेहात अपने लिए जमा कर सके। अल्लाह ताला हमें किसी मुसीबत से पहले ही हमें सीधा रास्ता दिखा के और उसके ऊपर चला दे। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तिलावत सुन।
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً